ऐसे भीतर इसके नियत इतना बुरा है और ऊपर से ये दिखावा कर रही है, माता का व्यवहार कर रही है, इसका मुंह देखना उचित नहीं है। और एक विचार है कि उन्होंने सोचा कि मुझे निडर देखकर कहीं ये भयभीत न हो जाए, अगर मैं एकदम निश्चल भगवत स्वरूप में देखूं तो डर न जाए। तो आगे इसको लीला बढ़ाना है, इसलिए भगवान नेत्र बंद कर लिए कि इसको हताश नहीं होना चाहिए, उसके उत्साह भंग नहीं करना चाहिए, जो करना चाहती है बस करने दो। तो इस प्रकार भगवान विविध प्रकार की बातें सोच रहे हैं टीकाकारों के विचार में। टीकाकार लोग सोच रहे हैं कि भगवान यह सोच कर किए होंगे, यह सोच कर किए होंगे। और ये धात्री रूप में आई है, माँ के रूप में आई है, इसलिए मारना उचित नहीं है, परंतु यह छोड़ देने के बाद तो बच्चों को मारेंगी ही, इसलिए इसके बेस को देखने पर हो सकता है, इसके स्टाइल, इसके एक्टिंग को देखने पर दया आ जाएगा, एक काम गड़बड़ है। अगर वो इसके वात्सल्य स्नेह सौहार्द को देखने पर हमारे अंदर दया आ गई तब तो गड़बड़ हो जाएगा, मारना तो जरूर है, तो मैं देखूंगा ना दया आएगी। भगवान प्लान पूर्वक आंख बंद कर लिए, क्योंकि पुतना जो रूप धारण करके आई थी वो ऐसी अद्भुत रूप था कि माता रोहिणी और जसोदा हतप्रभ हो गई। अरे इतना इसके अंदर स्नेह सौहार्द है, ऐसा सौहार्द तो हमारे अंदर भी नहीं है। वास्तव में इसी स्त्री को इस बच्चे की माँ होने का अधिकार है, ऐसा सोचने लगी। आगे का श्लोकों में आएगा। तो इस प्रकार अनेकों विचार है, अभी तो लगभग 30 विचार टीकाकारों का है अलग अलग, तो इसमें से कुछ आप लोगों के सामने कहा, अभी आगे का श्लोकों की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार पुतना जब श्री कृष्ण को देखी तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जैसे कोई सर्प को रस्सी समझकर उठा ले वैसा उठा ली। तम तीक्ष्ण चिताम अति बाम चेष्टिताम विक्षांतरा कोश परीक्षदा शिवत बरस्त्रियं तत् प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठताम। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे पुतना देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, एकदम लक्ष्मी की तरह। तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मखमली म्यान में खूब सुंदर मखमल का म्यान बना हो और उसके भीतर तीक्ष्ण तलवार हो, वैसा पुतना देखने में तो एकदम स्नेहमयी जननी की तरह, माँ की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका हृदय बहुत कुटिल था। विक्षम तरा कोश परीक्षदा शिवत, जैसे परीक्षद म्यान तलवार रखने वाला, उसमें जैसे 80 तलवार रखा जाता है चमकते हुए मखमली म्यान में, वैसे क्रूर हृदय पुतना देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। और बरस्त्रियम तत् प्रभया च धर्षिते, बहुत भद्र सुशीला स्त्री दिख रही थी, और उसके प्रभाव को देख करके जब घर के भीतर आई तो निरीक्ष मारे जननी यतिष्ठता, वह जननी कृष्ण की माँ जसोदा और रोहिणी आदि, उसके सौंदर्य प्रभाव, उसके एक्टिंग को देखकर एकदम हतप्रभ हो गई, चुपचाप खड़ी रह गई। घर में एक अनजान स्त्री प्रवेश कर गई है, उसको टोकना चाहिए, मना करना चाहिए, लेकिन वो मना करने का अवसर ही नहीं मिला। पुतना घर में घुसी और घुसते ही कहने कहां लाला है, लाला किधर है, वो कुछ बोल ही नहीं पाई रोहिणी और जसोदा जी। और जाते जाकर एकदम पलंग पर सोए हुए बालक को गोद में उठाया, अरे मेरे लाला, चुमने लगी जसोदा और रोहिणी के, अरे इसके अंदर इतना स्नेह, एक कौन है जिज्ञासा तो छोड़ दीजिए, उसके एक्टिंग पर माता जसोदा और रोहिणी एकदम अपने पर चकित हो गई कि इतना स्नेह तो हमको भी नहीं है अपने बच्चे के प्रति। वास्तव में विधाता को यह चाहिए था कि इसी औरत के गर्भ से इस बच्चे का जन्म होना चाहिए था, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। हम लोग इतना स्नेहमयी नहीं है जितना ये है। रोहिणी और जसोदा दोनों एकदम चकित देख रही हैं, कुछ बोल ही नहीं पाई, जबकि भगवान शिव नंदलाला का दर्शन करने आए थे, लेकिन माता जसोदा उनको परमिशन नहीं दी दर्शन करने का। बहुत कुछ करना पड़ा भोले बाबा को, अंततः अपना प्रभाव दिखाना पड़ा। और इधर भगवान भी तरस रहे थे देखने के लिए, दोनों तरफ से देखने की उत्सुकता है, लेकिन माँ जसोदा नहीं चाहती थी, क्योंकि भोले बाबा का वेशभूषा ठीक नहीं था, तो डर रही थी कि पता नहीं कहाँ का अवघड़ कुछ कर देगा टोना टमाना हमारे बच्चे को, अथवा हमारा बच्चा इस को देखकर डर जाएगा, इसलिए वो नहीं दिखाना चाहती थी। तो भोले बाबा निराश होकर चले गए, बगल में ही जाकर रुके, लेकिन नंदलाला भी इधर रोने लगा, बहुत ज्यादा रोने लगा। तो बाद में माता जसोदा को भय तो हो गया, वही कुछ कर दिया है, तो फिर बुलवाई कि उसको बुलाओ, हमारा बच्चा वो रो क्यों रहा है, जब से वो गया है वो रो रहा है। तब भोले बाबा को बुलाया गया कि भाई नंदरानी बुला रही है, आप चलिए, अब जोगी हैं, कुछ बच्चे को हो तो नहीं गया। तो भोले बाबा बहुत खुश हुए, आए और माता जसोदा अपने लाला को लेकर आई, कही कि देखो हमारा लाला रो रहा है, जब से तुम आए हो और चले गए। तो कहे हाँ इसको कुछ तो हो ही गया है, लेकिन हमारे जटा में एक जड़ी है, उसको मैं खोलता नहीं हूँ, वो भीतर ही रखता हूँ, तो एक काम करो कि अपने लाला का चरण मेरे जटा से स्पर्श कराओ, और मैं नीचे बैठता हूँ, अपने लाला का दोनों चरण मेरे सिर पर रखो, और जड़ी से जब स्पर्श हो जाएगा तब ये रोना बंद कर देगा। तो अब माता को तो बस बच्चे को सुख शांति चाहिए, रख दी चरण सिर पर। भोले बाबा भी खूब मस्ती में खुश हैं और भगवान भी, दोनों खुश हो गए। तब भगवान हंसने लगे, ज्यों ही चरण स्पर्श किए, बड़ा भंगी के साथ चरण लिए भोले बाबा, ठीक है। तो भगवान भी हंस रहे हैं और वो भी। तब माता जसोदा कहती है, अरे जोगी नंदगांव छोड़कर मत जाना, यहाँ तुम्हारी सारी सुविधा की व्यवस्था करूंगी, जब जब मेरा लाला रोएगा तब जरूर आ जाना। तो इस प्रकार की व्यवस्था करना पड़ा भोले बाबा को। और इधर पुतना को कुछ नहीं करना पड़ा, चकित है माँ जसोदा, एकदम चकित मुद्रा में देख रही है कि क्या हो रहा है, ये कौन है, क्या कर रही है, एकदम चुपचाप खड़ी देखती रही। और इधर तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर जमोलवणम घोरांक मादाय शिशोर ददावथ गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीडतत प्राणै समम रोष समन्वितो पिवत। इधर वो भयानक राक्षसी पुतना बच्चे को गोद में ली और थोड़ा सा तो एक्टिंग की स्नेहमयी जननी का, चुम्बन आलिंगन की और तुरंत अपना स्तन पकड़वा दी, और श्री भगवान उसका स्तन पकड़ लिए, और वह घोर हलाहल लेकर आई थी जो समुद्र मंथन के समय निकला था, तो उसके गंध से ही व्यक्ति मर सकता है। भगवान उस स्तन को पकड़ लिए और रोष को अपना साथी बनाकर, क्रोध को समम प्राणै समम रोष समन बितो पीवत, स्वयं भगवान अकेले नहीं उस स्तन को पिए, उसके दूध को पीने के लिए भगवान क्रोध को साथी बनाए। और कुछ आचार्य कहते हैं क्रोध माने महाकाल, क्रोध माने भगवान शिव। इस प्रकार रोषाधिष्ठात्री देवता रुद्र को साथी बनाए और उसके स्तन को पिए, अर्थात भगवान शिव को आमंत्रित करके हलाहल उनको दे दिए कि आप पी जाइए, और प्राण भगवान पी गए, दोनों मिलकर पिए, हलाहल भगवान शिव पी गए और प्राण भगवान महाकाल स्वरूप श्री कृष्ण। तो इस प्रकार उसके स्तन को जब पीना प्रारंभ किए और स्तन पीते हुए जब उसके प्राणों पर प्रहार हुआ, जब उसके प्राण पीने लगे, तब वो छटपटाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमान अखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरण भुज मुहु प्रसिन्न गात्रा क्षिपति रुरोदह। सा वह पुतना मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, छोड़ रे बस हो गया अब नहीं, एकदम छटपटाने लगी, छोड़ मुंचा मुंचा अलम अलम, बहुत हो गया लेकिन ये तो छोड़ना जानता नहीं, इसको छोड़ने का आदत ही नहीं। जिसको एक बार स्वीकार करता है छोड़ता नहीं है। अब पकड़ लिए स्तन पीने लगे तो अब छोड़ 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 छटपटाने से थोड़े छोड़ देगा। छोड़ दे अब बस बस बार बार कहने लगी और कहते ही हाथ पैर पीटने लगी, एकदम छटपटाने लगी, हाथ पैर पटकने लगी, रोने लगी, उसका आंख उलट गया और सारे शरीर पसीने से लथपथ, प्रसिन्न गात्रा छिपती रोध पसीने से लथपथ हो गई और देखते देखते वह लक्ष्मी राक्षसी के रूप में बदल गई। इतना सुंदर जो रूप था और राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई और देखकर जसोदा और रोहिणी तो कुछ बोल ही नहीं पाई। अभी तो हक्का बक्का थी उसके मातृस्नेह वात्सल्य को देखकर, अब और चकित हो गई राक्षसी रूप देखकर। आ तब तक उसको बच्चे को लेकर आकाश में उड़ गई, जैसे विमान धरती छोड़ते हुए आकाश में जाने लगता है, बस जाने लगी। देख करके एकदम सारे ब्रजवासी चकित हो गए, बालक को लेकर उड़ गई। तस्या स्वने नाति गभीर रंहसा साध्वी महीर्दौश्च चचाल सग्रहा रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जना पेतु छितौ वज्र निपात शंकया। उसका चिल्लाहट इतना तेज था, बहुत जोर से छटपटाने लगी, बहुत जोर से आवाज करने लगी, तो उसके आवाज से मानो सारा आकाश गूंज गया। पहाड़ों से पर्वतों से टकराकर आवाज आने लगा, गिरिराज आदि से। बहुत विचित्र अवस्था हुई, सारे ग्रह नक्षत्र पृथ्वी सब डगमगाने लगे, अंतरिक्ष आदि लगा कांपने लगा, सारे दिशाएं कांप गई। लोगों को ऐसा भ्रम हो गया कि मानो वज्रपात हो गया गोकुल पर, बहुत भयंकर आवाज हुआ, बहुत भयंकर आवाज। तो इस प्रकार पुतना के विशाल शरीर जो आकाश में चल रहा था, एकदम यह विमान ऊपर जा रहा है, उस पर भगवान है उसके शरीर के ऊपर। तो आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, निशा चरित्वम व्यथित स्तना व्यसु व्यदाय केशान चरण भुजावपी प्रसाद ज गोष्ठे निज रूप आस्थिता ब्रजा हतौ वृत्त इवा पतन नृप। तो इस प्रकार वह निशाचरी पुतना के स्तनों में बहुत ज्यादा पीड़ा जब हुआ, तब वह राक्षसी रूप में प्रकट हो गई और उसका शरीर विशाल हो गया, मुंह फट गया, सारे बाल बिखर गए, हाथ पांव जहां तहां ऐसे भयंकर रूप में प्रकट हुआ और पृथ्वी पर वैसे गिरा जैसे इंद्र के वज्र से आहत होकर पंख कट जाने से पर्वत गिरे थे, वैसा गिरा। और फिर गिरने की बात कह रहे हैं कि एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ब्रजा हतो वृत्त इवा पतन रिप, जैसे इंद्र के वज्र से वृत्रासुर गिरा था। तो यहाँ जीव गोस्वामी कहते हैं कि वृत्त से उदाहरण देना सुखदेव गोस्वामी का बहुत समचिन है, दो सेंस में वृत्रासुर से उदाहरण दे रहे हैं कि एक तो वृत्रासुर बहुत विशाल शरीर धारण करके आया था इंद्र के पास युद्ध करने के लिए, और उस पर इंद्र का कोई भी हथियार काम नहीं कर रहा था। तो अंततः श्री भगवान के निर्देश से दधीची ऋषि के हड्डी से एक वज्र बना, उस वज्र से वृत्रासुर मारा गया और वो विशाल शरीर जो सारे आकाश को आवृत करके रखा था, वो जब गिरा भयंकर शरीर विशाल रूप में, तो उस विशाल काय के से तुलना कर रहे हैं कि उतनी बड़ी लंबी लंबा शरीर हो गया पुतना का, जो 6 कोस लंबा था। और फिर गति के विषय में भी उतना भयंकर राक्षस हुआ वृत्रासुर, लेकिन इंद्र के वज से आहत होकर मरने के बाद वह भगवान को प्राप्त किया, भगवत धाम प्राप्त किया। तो उसकी गति और शरीर की विशाल काय, इसके चलते तुलना कर रहे हैं वृत्रासुर से। जीव गोस्वामी कहते हैं, वज्रा हतो वृत्त इवा पतन नृप, हे राजन वह विशाल शरीर वृत्रासुर की तरह विशाल था और जैसे वृत्रासुर अपने जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करके भगवत धाम चला गया, वैसे पुतना भी यद्यपि भगवान का स्मरण नहीं की लेकिन गति यही हुआ जो वृत्रासुर का, ये भी भगवत धाम चली गई। तो वज से आहत होकर वृत की तरह पुतना गिरी, ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार आगे वर्णन करते हैं, पत्मानोपि तद्देह स्त्रिज्ञ व्युत्यंत द्रुमान चूर्णयामास राजेन्द्र महदासी तद्भुतम। तो भगवान अब सोच रहे हैं कि इस विमान को लैंड कहाँ करना है, तो आकाश में चल रहा है, बहुत विशाल है, अगर कहीं गिरा किसी गांव में किसी शहर में तो सारा ध्वस्त कर देगा, सारा मकान वकान सब, बहुत लोगों का क्षति हो जाएगा। तो भगवान विचार करने लगे कि इसको कहाँ गिराया जाए। तो चूर्णया मास राजेंद्र, हे राजेंद्र, हे महाराज परीक्षित, पुतना के शरीर 6 कोस में हो गया था और बहुत सारे चीजों को कुचल डालता, इसलिए भगवान विचार पूर्वक उसको जमुना किनारे कंस के बागीचे के ऊपर गिराए, गोकुल से पश्चिम तरफ जमुना के तट पर, कि कहीं गोकुल वासियों का कोई क्षति नहीं होना चाहिए, कोई मकान या खेत या कुछ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए बड़ा सोच विचार करके जमुना के तट पर गिराए और उसके शरीर गिरने से 6 कोस जगह घेरा और पूरा जमुना के तट पर एक पर्वत जैसा उसका शरीर पड़ा हुआ था। उसके गिरने से सारे पेड़ पौधे जो कंस का बगीचा था वो ध्वस्त हो गया, एकदम चूर्ण हो गया। चूर्णया मास राजेंद्र, हे राजेंद्र, हे महाराज परीक्षित, चूर्ण हो गया, अद्भुत शरीर था उसका। तो फिर शरीर का थोड़ा वर्णन करते हैं, ईशा मात्रोग्र दंशास्यम गिरी कंदर नाशिकम गंड शैल स्तन रौद्रम प्रकृणारुण मूर्धजम अंधकूप गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम बद्ध सेतुर्भुजो वग्नि शून्यतो यद् हृदोदरम। पुतना का शरीर इतना भयानक था, इतना विशाल था कि उसके मुंह इतने भयंकर लग रहे थे गिरने के बाद, उसके नथुने नाखून जो नाक है वो गुफा की तरह लग रहा था, पहाड़ की गुफाओं की तरह बहुत भयंकर, और गंड शैल स्तनम रौद्रम और उसका विशाल विशाल स्तन ऐसा दिख रहा था जैसे पर्वत का कोई शिखर हो, पहाड़ का कोई शिखर हो, ऐसा विशाल था। और प्रकीर्णा अरुण मूर्धजम, और इसके साथ साथ बाल चारों तरफ बिखरे हुए थे, बहुत भयंकर बाल चारों तरफ बिखरे हुए, और बड़े बड़े पर्वत के चट्टानों में जैसे जंगलों में विशाल वृक्ष होते हैं उसके रोए भी वृक्ष जैसे दिख रहे थे, और आंखें अंधेरे कुएं की तरह दिख रहे थे, अंधकूप गभीराक्ष गहरी आंखें विशाल विशाल कुएं की तरह, अंधेरी कुएं की तरह, और पुलिन आरोह भीषणम, और इसके साथ नदी की करार की तरह भयंकर उसके नितंब जांघे और पेट उसका ऐसा सूखा हुआ था, धसा हुआ था मानो सूखा हुआ तालाब हो, ऐसे कह रहे हैं। बद्ध सेतुर भुजो वंगरी सुन्नतो यद् हृदोदरम, उसके पेट एकदम सूखे हुए सरोवर की तरह दिख रहा था और उसके पैर पुल की तरह दिख रहे थे जैसे नदी पर कोई पुल हो। संतस्त्रुष्म तद्वीक्ष गोपा गोप्य कलेवरम पूर्वम तु तन्निस्वनित भीन हित करण मस्तका। और ब्रजवासी लोग पुतना के गिरे हुए शरीर की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं, सबके सब डर गए, टोटल गोकुलवासी सारे गोप गोपियां एकदम भय से आक्रांत हो गए कि पता नहीं वो राक्षसी क्या की, बच्चे का क्या हुआ, नंदलाला का क्या हुआ, सब डरे हुए थे। उसका चिल्लाहट सुनकर छटपटाहट सुनकर सबका कान फट रहा था, एकदम छटपटा रहे थे। तो अब जा रहे हैं खोजते हुए, लेकिन वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की भिन्न हृत कर्ण मस्तका, उसके आवाज से पूर्वम तू तन निश्वना, जो पहले आवाज की थी उसी आवाज का गुंज ब्रजवासियों के कानों में अब तक गुंज रहा था। लग रहा था कान फट जाएगा, इतना भयंकर आवाज था, लग रहा था सिर फट जाएगा। सबके सब बड़े दुखी थे। बालम च तस्या उरसी, अब दौड़े जहां वो पुतना गिरी उधर सारे ब्रजवासी दौड़ कर गए। तो जाकर देखते हैं कि बालम च तस्या उरसी किडंतम अकुतो भयम, वह तो गिरी पड़ी है, उसका आंख उल्टा हुआ है, वो तो मर चुकी है, लेकिन बच्चा उसके छाती के ऊपर निर्भय है और बड़े आनंद से खेल रहा है। क्रीडंतम, क्रीडंतम खेल रहा है, कुछ क्रिया दिख रही है, वो चल रहा है, घूम रहा है, कुछ कर रहा है, तो देख रहे हैं। और फिर निश्चिंत निर्भय अकुतो भयम, कोई भय नहीं है, आनंद से। तो गोप्यस तूर्णम समय भ्यत्य जगृहु जात संभ्रमा, तब सबसे पहले वहां उतावली हुई गोपियां पहुंची दौड़ते हुए। दौड़ कर तो सभी लोग चले गए, लेकिन गोपियां वहां पहुंची और पहुंच करके उस पुतना के शरीर के ऊपर चढ़ने का जुगाड़ करना पड़ा। अब कोई लकड़ी का बांस का सीढ़ी लगाकर चढ़ना पड़ा और सबसे पहले चढ़कर गोपियां बच्चे को अपने गोद में ले, जगृहु जात संभ्रमा, संभ्रम होकर झटपट उठा ली। अरे मेरे लाला भी जीवित है, एकदम खुश है और भगवान खूब हंस रहे हैं। सब परेशान हो गया, भगवान बड़े प्रसन्न हैं। तो आज बच्चा निर्भय खेल रहा है, मानो ऐसा एक टीकाकार लिखते हैं कि मानो भगवान चकित भी है, उनको हंसी भी आ रहा है। मैं दुदमुहा बच्चा हूं, शिशु, अस्तन पान मेरा जीविका है। अरे अपनी माँ पिलाए या भूखा बच्चा को कोई दूसरी माँ भी अस्तन पकड़वा दे तो पीने लगेगा, उसको तो दूध से काम है। तो ये पुतना माँ आई, माँ तो नहीं मौसी आई, कंस उसको अपना बहन स्वीकार किया था। एक टीकाकार लिखे हैं, मैं समय के अभाव में नहीं कह पाया, कि पुतना पहले तो आई एकदम टाल ठोकते हुए, मुझसे कुश्ती कर लो कुश्ती कर लो, घूमती फिरती थी, अपने भुजाओं को दिखाती फिरती। कंस के पास आई थी युद्ध की चुनौती लेकर, लेकिन कंस देख लिया कि इससे युद्ध कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए जीत भी गया तो एक स्त्री से जीतना कौन बड़ा प्रतिष्ठा है, अगर हार गया तो ये अपना पति कह रही कि मैं युद्ध जीतूंगी तो तुमको अपना पति बनाऊंगी, और हार गया तो फिर तो हार ही गया, मारा जाएगा। तो अगर जीत गई तब तो ये राक्षसी गले पड़ जाएगी, और जीत गया तो कौन बहुत बड़ा पुरुषार्थ प्राप्त करूंगा, इसलिए इससे युद्ध नहीं करना है। तो कंस कहा कि नहीं नहीं, आपसे लड़ाई करना उचित नहीं, मैं आपको बहन बनाता हूं, मेरी बहन बन जाओ, राखी बांध दो, भाई बहन का संबंध रहेगा। तो बहन बनना स्वीकार कर ली। तो भगवान सोच लिए कि मौसी जी आ गई है, तो मौसी जी आई तो माँ अस्तन पिलावे या मौसी पिलावे, दोनों में क्या भेद है, जब मौसी अस्तन ऑफर कर रही है तो भगवान प्रेम से पीने लगे, एक बिचारे भी था तो अस्तन पीने लगे, और मेरा तो काम ही भूख पर अस्तन मिल गया पीने का, तो अब क्या कहना है। और उसमें भी अस्तन पीते ही मौसी मर गई, तो अब बताओ मौसी मेरा क्या दोष है, मैं तो दूध पी रहा था। तो भगवान चकित भी है, उनको हंसी भी आ गई कि दूध पिलाने आई और मर गई, क्या हो गया। वो तो वक्षस्थल के ऊपर भगवान मानो चकित चकित दृष्टि से देख रहे थे। और फिर एक विचार कहते हैं कि वास्तव में वह राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान वामन देव सुंदर रूप धारण करके जग मंडप में पधारे तो रत्नमाला को बड़ा स्नेह उमड़ा कि कितना सुंदर बालक है, हमारे गर्भ से बच्चा जन्म लेता ऐसा कितना अच्छा होता। और जब वही बच्चा तीन डेग में भूमंडल नापने लगा तो उसको बड़ा क्रोध आया, ये तो बड़ा दुष्ट है, अगर मेरा बच्चा बनकर आएगा तो इसको जान से मार दूंगी गला घोट दूंगी इसका। तो दोनों विचार को भगवान स्वीकार कर लिए, कहे कि ठीक है मैं तुम्हारे पास बालक बनकर आऊंगा, और गला घोटने की विचार कर रही हो तो मैं तुमको ही मार डालूंगा, तुम्हारा साथ पूरा करूंगा। तो वही इस गलत विचार के कारण पुतना बनी और भगवान उसका स्तनपान करके उसकी लालसा पूरा की। इस प्रकार जब गोपियां कृष्ण को प्राप्त की तो लेकर आई जसोदा रोहिणी जी के पास। जसोदा रोहिणी भ्यम ता समम बालः सर्वतः रक्षाम विदधिरे सम्यक गोपुक्ष भ्रमरादि। तो गांव में और खास करके गोकुल में जहां गाय रहती हैं और बच्चे पर झाड़ लगाना है, उसको कुछ भूत प्रेत राक्षसी छू दी है तो गाय के पूंछ से झाड़ लगा रही हैं। और झाड़ लगाई सबसे पहले उसको गाय के पूंछ घुमाई। अब इस पर तो सभी लोग लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं गांव में गाय सुलभ रहती थी और सारा चीज गायों से ही किया जाता, गाय के गोबर से, गाय के दूध से, गाय के पूंछ से। तो एक टीकाकार लिखते हैं कि भगवान मानो जीवन के प्रारंभ में ही गाय के ऋणी हो गए, गाय के झाड़ लगाने से भगवान का ये प्रेत पीड़ा दूर हुआ पिशाचिनी का, और गाय के गोबर से इनको अंगन्यास तिलक किया गया, गोमूत्र आदि करके उनको औषधि पिलाई गई, बहुत कुछ हुआ। तो फिर भगवान के नाम का उच्चारण करके उनको किया गया, तो भगवान इतना कृतज्ञ हुए कि हमारी रक्षा हमारा स्वास्थ्य गाय से हुआ तो हम जीवन पर्यंत गायों की सेवा करेंगे, और जब तक ब्रज में रहे गाय चराए, गोरक्षा में उनका मन लग गया। भगवान कृतज्ञ है ना, तो गाय के उपकार को नहीं भूल सकते। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गो रजार्भकम् रक्षाम चक्रुषः सकृता द्वादशांकेषु नाम भी। उनके शरीर में 12 जगह तिलक लगाया गया, उनकी रक्षा गोमूत्र से, गोबर से अभिषेक कराया गया और फिर 12 जगह पर भगवान के नाम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, उन्हीं के नाम से ही उनकी रक्षा की गई। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि भगवान का नाम भगवान की रक्षा करने में समर्थ है तो हमारे जैसे साधारण जीवों के विषय में कहना क्या है। चलिए इसकी व्याख्या फिर आगे करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद।